मुश्किल अल्फाज की वजाहत। हुर्रिमत, सूरत अन्निसा आयत नंबर 23, पहला लफ्ज है हुर्रिमत, ये माजी मजहूल है, हराम कर दिया गया। उम्महातुकुम, उम्महात और उम्महात कहते हैं माओं को। उम्मा और उम्महात इसकी जमा है। वह बनातुकुम, बनात भी जमा आया है, बिंत वाहिद है बेटी को कहते हैं और बनात इसकी जमा है। वह अखवातुकुम, उख्त वाहिद बहन को कहते हैं, अखवात इसकी जमा है। वह अम्मातुकुम, अम्मतुन ये कहते हैं फूफी को और अम्मात इसकी जमा है फूफियां। वह खालातुकुम, तो खाव व लाम इसका मादा है और खाल अरबी जबान में जो है वो खालातुन वाहिद है खाला के लिए आता है और खाल खालू जान जैसे खालू के लिए आता है, तो खालात फिर क्या है ये जमा है, खाला तुम वाहिद है। तो ये तो आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना खाला। दोबारा बनात आ गया, जमा है बिंत वाहिद और बनात उसकी जमा है। अख भाई को कहते हैं। अर्दानकुम, अर्दानकुम ये लफ्ज अहम है और इसका मादा है रा द्वाद आयन, इसके मानी है बच्चे का दूध पीना। रदात भी इसी से है, रजाई बहन भाई, तो इसकी फैमिली के मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो आप भी कसरत से इस्तेमाल करती हैं। तो फिर यहाँ पे जो है कहा गया कि अर्दानकुम के दूध पिलाया हो तुमको, तो अर्दाना दूध पिलाने वाली वो औरतें हैं जिन्होंने बच्चों को फिर दूध पिलाया है। तो अर्दात ही ये भी इसी की फैमिली का है, रादवाद ऐन, तो रदात किसे कहते हैं, दूध पिलाना। अहम लफ्ज है निसाएकुम, इसका वाहिद क्या है, इमरातुन, शाबाश, तो निसा इसकी जमा है। व रबाइबुकुम, ये आप वैसे पढ़ चुकी हैं लफ्ज, कैसे बताऊं मैं, वाह 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 शाबाश, रब्बिल आलमीन पहले सबक में पढ़ लिया था तो, लेकिन अब इसकी शक्ल बड़ी मुख्तलिफ है इसलिए आप परेशान लग रहे हैं सारे। तो मादा वही है रा बाबा और रब के मानी क्या होते हैं, पालने वाला परवरिश करने वाला। और रब का लफ्ज जो है इसके तीन मानी है, नंबर एक मालिक और आका, नंबर दो मुरब्बी परवरिश करने वाला खबरगीरी और निगहबानी करने वाला, नंबर तीन फरमारवा हाकिम मुदब्बिर मुंतजिम। तो इन तीनों मानों के लिहाज से अल्लाह ताला कायनात का रब है, नंबर एक वो मालिक और आका है, नंबर दो वो मुरब्बी है परवरिश करने वाला है ख्याल रखने वाला है निगहबानी करने वाला है, और नंबर तीन फिर वही हाकिम भी है वही मुंतजिम भी है वही मुदब्बिर तदबीर भी करने वाला है जरूरियात जिंदगी फराहम करने वाला। तो रबाइबुकुम, तो यहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तरबियत करना अरबाब सरपरस्त उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अरबी लोग वहां पे जिनसे घर किराए पे लेते हैं ना जैसे उनको अरबाब कहते हैं कि घर के वो मालिक हैं और फिर वो पानी बिजली और उनकी जो है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह राबतुन वो औलाद जो पहले शोहर से हो और दूसरे शोहर की जेरे तरबियत हो, या पहली बीवी से हो और दूसरी बीवी की आगोश में परवरिश पा रही हो। राबतुन। अब आप देखेंगे एक औरत की कहीं शादी हुई, वहां से उसको एक दो बच्चे पैदा हुए। अब उस शोहर से तलाक हो गई या किसी भी वजह से जो भी फरागत या वो दुनिया से चला गया, अब उसके वो एक दो बच्चे हैं, उसने अब दूसरे शोहर से शादी कर ली। तो अब वो औलाद जो उसकी पहले शोहर से है और दूसरे शोहर की वो बच्चे जो है वो जेरे तरबियत है, तो वो क्या कहलाएंगे? राबतुन। ठीक है। इसी तरह एक बीवी से कुछ बच्चे हुए, अब वो बीवी फौत हो गई या शोहर ने उसको तलाक दे दी, बच्चे उस आदमी शोहर ने ले लिए, अब उसने एक और शादी कर ली है। ठीक है। तो उसके पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो दूसरी बीवी के पास जो है वो जेरे तरबियत है, दूसरी बीवी की आगोश में वो परवरिश पा रहे हैं, तो उनके लिए भी राबतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो रबीबुन या रबीबतुन ये वाहिद है, रबीबुन रबीबतुन, और जमा इसकी रबाइब। जमा क्या है? रबाइब। और यहां पे रबाइब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, रबाइब। हुजूरेकुम। हुजूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है गोद के लिए, और यहां पे ये लफ्ज जो है वो जमा के लिए आया है, इसका वाहिद है और जो इसका मादा भी है, हा जीम रा। हा जीम रा और मानी है गोद के। अब आप देखें कि यहां पर जो है हुजूरेकुम, हुजूरेकुम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और अब आप देखें कि गोद के लिए कुरान में एक महद का लफ्ज आया है, दूसरा हुजूर का। हुजूर का वाहिद हिजर भी है और हुजर भी है, और मानी क्या है? गोद। अरबों के यहां ये मुहावरा भी था कि फुलानुन फी हिजरी फुलां, फलां शख्स फलां की गोद या हिफाजत में पला भड़ा जवान हुआ, या फिर फुलानुन फी हिजरी फुलां, या वो हुजर का लफ्ज बोलते थे या हिजर का बोलते थे, तो उसकी जेर निगरानी वो पला बड़ा। तो इसका ये मानी भी होता है कि जैसे किसी ने किसी को गोद में लेके पाला है, और ये भी कि कोई किसी के जेर निगरानी है उसके लिए भी आता है, या किसी को माल के इख्तियार दे दिए जाए, हिफाजत के इख्तियार दे दिए जाए, तो इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। महद होता है दूध पीते बच्चे के लिए माँ की गोद, और हुजर है बड़ी उम्र के बच्चों के लिए गोद, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चा जो है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती सिवाय इसके कि उसको दूध देना है, वो दूध पीता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी कफालत चाहिए कि उसका माल, उसकी जिम्मेदारी और उसकी निगरानी, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हुजर का। तो गोद भी आप कह सकते हैं गोदो, गोदो या फिर जेरे निगरानी। हलाइलू, हलाइलू और हलाइलू जो है इसके मानी क्या है? हाँ, हा लाम लाम हलाल के लिए आता है और ये जायज के लिए आता है, और यहां पर जो है ये जमा के लिए आया है। अस्लाबेकुम, अस्लाब सुल्ब से है, स्वाद लांबा सुल्ब। सुल्ब के मानी क्या है? सुल्ब जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जैसे बीट के लिए, शाबाश। पीठ के लिए आप तीन लफ्ज पढ़ चुकी हैं। हाँ शाबाश। एक तो आपने जहरुन जहूर उसकी जमा है वो पढ़ा, और दूसरा आपने दुबुर पढ़ा, और तीसरा है सुल्ब। तो जहरुन या जहूर जो है किसी जानदार का मकद से लेकर गर्दन तक का पिछला बैरूनी हिस्सा, मकद ये जो हिस्सा है ना पीठ पीछे पीठ का, यहां से लेके गर्दन तक का पिछला बाहर का हिस्सा जो बैरूनी हिस्सा है उसके लिए जहरुन आता है। दूसरा है दुबुर, मकद और हर चीज का पिछला हिस्सा, अब वो गर्दन तक का नहीं है बस नीचे का ही जो दुबुर पीठ के लिए आ गया। और सुल्ब कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी की चर्बी गुद्दा सब के लिए आता है, और ये हड्डी पुश्त के दरमियान में होती है, लिहाजा इसका तर्जमा पीठ या पुश्त का किया जाता है सुल्ब। और सूरत तारिक आपको हिफ्स हो जाएगी इंशाल्लाह, और कुछ बहनों को हो भी चुकी होगी क्योंकि आपके सिलेबस में जो जमा पूरा है जिसको हिफ्स करना है उसमें एक आयत है यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब तजमाउ, जमा करना, उख्तैन, उख्त वाहिद है और उख्तैन इसकी जमा है। सलाफा जो गुजर गया, तो असलाफ पहले लोग जो गुजर गए, और अखलाफ जो बाद में आने वाले हैं। वल मुहसनातु, मुहसनात जमा है, इसका वाहिद है वल मुहसनतुन, ताए मरबूता के साथ लिखें तो वाहिद है, इसका मादा है हा स्वाद नून। अरबी जबान में हा स्वाद नून किले को कहते हैं। अब तिला जैसे आप देखें कि जब कले बनाए जाते थे इसका, वैसे हम इसको हमने इसको किला इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका सही तलफ़ुज कला है, काफ के ऊपर फतह है कला। तो जो है ये मुख्तलिफ आपको हो सकता है किसी किले का नाम आपको आता हो, लाल किला। लाल किला, हाँ किला है गरदास, डिफरेंट कले जो मजबूत बनाए जाते थे ताकि जो अंदर लोग हैं या बस्ती है या जो लोग हैं वो महफूज रहे। तो हसन हा स्वाद नून का लफ्ज हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कुरान में ये लफ्ज चार मानों में इस्तेमाल हुआ है। अब आप देखें कि जब कोई कले के अंदर चला जाता है तो वो महफूज हो जाता है, तो वो महफूज हो जाता है। इसी तरह अगर कोई औरत जो है उसकी शादी हो जाए तो शादी के कले में जाती है ना, जैसे मर्द उसके लिए एक हिसार और कले का काम देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी इज्जत की, अस्मत की, सब चीजों की हिफाजत करता है। तो शादीशुदा औरत को भी मोहसना कहा जाता है कि वो एक कले के अंदर है, हिफाजत के अंदर है। नंबर दो, आजादी के लिए भी, आजाद औरत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जो आजाद औरत होती है ना, तो वो भी क्या है कि क्योंकि वो कोई किसी की मुती नहीं होती, गुलाम नहीं होती, तो वो हिफाजत में होती है, आजाद औरतें, खानदानी औरतें है ना। इस तरह जो है वो तीसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और वो है पाक दामन औरतें, पाक दामन औरतें जो अपनी हिफाजत करती हैं इज्जत की, अस्मत की, तो पाक दामन औरतों के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है जो शरीफ होती हैं। और चौथा, इस्लाम के लिहाज से भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो भी इस्लाम कलमा पढ़ता है इस्लाम के दायरे में आ जाता है, तो इस्लाम भी फिर उसके उसके उसको कुछ हुकूक देता है और उसकी जो है वो हिफाजत करता है। तो चार मतलब हैं इस लफ्ज के जब कुरान में ये आता है, तो मौके की मुनासिबत से आपने देखना है कि इसके यहाँ पे क्या माने हैं। और वल मुहसनातु से मुराद यहाँ पे शादीशुदा औरतें हैं, शोहर वाली औरतें, क्योंकि वो निकाह के कले के अंदर हैं, क्योंकि अब वो इधर उधर आगे पीछे ऐसी कोई बात नहीं बल्कि वो मुहाफिज हिफाजत में है, हिफाजत में। ऐमानुकुम या मीम नून दाएं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दाया हाथ, और ऐमान जो है वो इसकी जमा है, यमुना दाएं को कहते हैं। किताब अल्लाह, कताबा का मानी होता है लिखना, और किताब लिखी हुई चीज, फर्ज, कानून, वरा, वरा का मानी क्या होते हैं, ये ज़वील अज़दाद में से है, आगे पीछे हटकर परे मुख्तलिफ मानी ये देता है। फिर मोहसिनीना आ गया, तो यहाँ पे भी जो है वो निकाह का किला मुराद है, हिसारे निकाह। गैरा मुसाफिहीना, यहाँ पे ये लफ्ज बहुत अहम है। गैरा जो है नहीं के मानी भी देता है, इलावा के मानी भी देता है, और यहाँ पे नहीं के मानी है। और मुसाफिहीना सीन फाहा, इसके लुगवी मानी है सफाहल मा सफाहल दम, खून का बहाना, पानी का बहाना, किसी बहने वाली चीज का तेजी से बहना, जारी हो जाना। आप आइंदा भी पढ़ेंगी दमम वस्फूहन, बहता हुआ खून। इसी तरह जब मनी का पानी नजायज तौर पर बहाया जाता है या बदकारी की जाती है, तो औरत का पानी हो जो जो ताल्लुक कायम करने के नतीजे में निकलता है, या मर्द का, तो दोनों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि उस पानी को नजायज तौर पर बहाने वाले। तो मुसाफिहुन बदकार मर्द, शहवत रानी करने वाले, जिनाकारी करने वाले, और मुसाफिहतुन जब ता लग जाएगी तो बदकार औरत, जिनाकार औरत। आपने पीछे भी एक लफ्ज पढ़ा था सूरत अल बकरा में, मैं यस फिकुद्दी मा, है ना, तो सफा का सीन फा काफ, मैंने बताया था बातूनी आदमी के लिए भी खूब तेजी से बातें निकालता है, और खून बहाने के लिए, वो खून बहाने के लिए आम इस्तफाक, हाँ जी सफाक, खून बहाने के लिए आम इस्तेमाल होता है। लेकिन सीन फा हा डिक्शनरी के लिहाज से खून बहाना, पानी बहाना, लेकिन फिर मुराद क्या है, जिनाकारी करना गलत तरीके से, जब वो ताल्लुक कायम करना तो गलत तरीके से करना, फिर उससे जो है वो उसके नतीजे में जो पानी बहाया जाता है, मनी का पानी। इस्तमता तुम, तो या पढ़ भी चुकी हैं, मीम ताएन मता फायदा, और कोई चीज चाहना उसके लिए भी आता है। उजूरा हुन्ना अजरुन, ये मेहर के लिए इस्तेमाल होता है, और उजूर इसकी जमा है। मेहर के लिए आपने नेहला भी पढ़ा है पीछे, अभी नेहला का लफ्ज भी आपने मेहर के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि उस अतिये को नहल कहते हैं जो खुशी से नेकी के तौर पर दिया जाता है। फरीदा फारादाद, और लफ्जी मानी क्या है, काटना, सख्त चीज को काटना। तो कटी हुई चीज जब अलग हो जाती है, मुतय्यन हो जाती है जैसे, तो क्या जैसे उसकी हैसियत एक फर्ज की हो जाती है। तरा दई तुम, अब अगर खाली होता ना रा द्वाद या तो रजिया या रदो, तो राजी होना, तो तरा दई तुम, यहाँ पे ता भी है फिर रा के बाद एक अलिफ भी है, तो आपस की रजामंदी, बाहमी रजामंदी से। कुछ लोग हैं, एक मर्द या एक औरत, एक औरत से, यानी कुछ भी दो लोग हैं या दो ग्रोह हैं, आपस में रजामंदी हो गई। आप सूरत अल असद में भी याद रखें इस बात को, जिसमें आखिरी सिफात क्या है, इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती व तवासौ बिलहक्की व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ, वहां पे भी ता आया है, बीच में अलीफ है, दोनों जो वर्ब है आखिर उसके साथ। तो कुछ लोग हैं जो आपस में ये काम कर रहे हैं, तो आपस की रजामंदी। कौलन, कौलन यही इसका मादा है, इसके मानी है ताकत के, इसके अलावा जो है वो गिना के लिए भी आता है, ये लफ्ज और ताकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुदरत रखना, फतायातेकुम, फतायातेकुम इसका मादा है फा ता वो, और फा ता या वाहिद है फतन, फतन वाहिद है, और खिदमत गुजार लौंडियों को गुलामों को उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फतन क्या है, नौजवान जैसे ना, और इसी तरह फतायात यहाँ पे जो है वो जमा इस्तेमाल किया गया है, खिदमत गुजार को कहते हैं। दोबारा फिर मुसाफिहातिन आ गया, तो सीन फाहा खून या पानी का बहाना लुगवी मानी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मनी के बहाने के लिए तो जिनाकारी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुत्तखिजाती, अब आप देखें कि मुत्तखिजातुन पकड़ने वाली और मुत्तखिजात इसकी जमा है पकड़ने वालियां, और रूट इसका क्या है, हमजा खाजाल शाबाज, अखज करना पकड़ लेना, और अखदान, अखदान जो है खा दाल नून, मादा है वाहिद है इसका खिद नून, जमा अखदान है, और खा दाल नून कहते हैं कि इसको कहते हैं जिसके साथ पोशीदा बुरे ताल्लुकात हो। और इस आयत में जो है वो ये खुले और चोरी छुपे जिना करना उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो चोरी छुपे आशनाई करना, बुरे ताल्लुकात जो है वो कायम करना, अखदान। अब आप देखें कि दोस्त के लिए भी आता है ये लफ्ज अखदान का, तो एक तो है ना जैसे अच्छे मानी में जो दोस्त होता है, तो अब जिससे ये ताल्लुकात होंगे तो कौन सा दोस्त है ये, जो जिसे चोरी छुपे आशनाई की जाएगी, अपना ताल्लुक बढ़ाया जाएगा, तो ये बुरे मानी में जो दोस्त इस्तेमाल किया जाता है अखदान। आप ये सोच लें कि दोस्त के लिए कुरान में 10 लफ्ज आए हैं और अखदान इसका 10वां दर्जा है, मानिए आशिक, कैसा, जैसे यार, बदकार, चोरी छुपे दोस्ती करने वाला, जिनसी ख्वाहिश पूरी करने वाला, मुजक्कर मोनस दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। वाहिद में खादाल नून खिदन भी है और खिदनातुन भी है, खादाल नून था क्योंकि खिदनातुन भी खिदन भी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओसिन्ना का रूट क्या है, खास स्वाद नून, खास स्वाद नून, और इसके मानी क्या है, तले को कहते हैं, हिसार के लिए इस्तेमाल होता है। अल अनाता, आयन नून ता, अनाता इसके मानी है गुनाह, बदकारी, मुशक्कत, हलाकत, और जैसे तकलीफ उठाना, किसी को मुशक्कत में डाल देना, इसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, मुशक्कत में किसी को डालना, और यूं देखें तो तकलीफ के लिए हमें कई लफ्ज मिलते हैं, 7 लफ्ज हैं, और अनाता 6ठा दर्जा है, ऐसी तकलीफ पाना जिसमें हलाकत का अंदेशा हो, इंतहाई तकलीफ, तकलीफ की शिद्दत, शिद्दत और दरर, इंतहाई तकलीफ। आयत नंबर 26 में है सुनन, सुनन ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। सीन नून, नून इसका मादा है, सीन नून नून, और वाहिद है सुन्नत और जमा है सुनन। कहते हैं तरीके को, तरीके के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और सुनन जैसे तरीके, और वैसे वैसे तो किसी भी तरीके को कह सकते हैं, लेकिन अगर हम जो है वो इस्लामी नुक्ते नजर से देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उसके लिए सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 27 है, इसमें लफ्ज है शहवात, शीन हा वो, शीन हा या, शहवत, ख्वाहिश के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और जब ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अब आप देखें कि कौन सी ख्वाहिश के लिए। शहवत का लफ्ज इंसान के तबी तकाजों की ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी ख्वाहिशात जिनकी तरफ इंसान का नफ्स खींचा चला जाता है, जैसे भूख, प्यास, माल की हिर्स, जिनसी ख्वाहिश, इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा भी, और ऐसी ख्वाहिश जिसमें इंसान के अपने इरादे को कोई दखल ना हो, खुद ब खुद जैसे अंदर से एक तहरीक उठती है ना, शहवत, तो ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमीलू, मीम या लाम, मैल, इसके मानी है झुकना, माइल होना, हटना। आप देखिए कि झुकने के लिए कुरान में 12 लफ्ज आए हैं, और माला, यमीलू, तबीयत का झुकाव होना, किसी बात या चीज पर तबीयत का माइल होना, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कहते हैं कि जब इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैल, आप देखें उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि उसके दिल में फिर मैल आ गया, उसका दिल एक और तरफ झुक गया, एक तरफ माइल हो गया, तो आमतौर पे उर्दू में भी ये लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं। और दईफा ज़ौफ से है, कमजोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अम्वालकुम, माल वाहिद है, अम्वाल इसकी जमा है, हर तरह के माल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल बातिल, बातिल जो है ना हक के मानी में आता है, और इसका ऑपोजिट हक है। जा अल हक्कु व ज़हक अल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूका। तिजारतन, ताजीमरा, ये ज़वील अज़ाद में से है, लेना भी, देना भी, खरीदना भी, बेचना भी। तरादिन, रादवाद वो, रादवाद या, रजामंदी। और तरादिन इसमें जैसे दो लोग भी हो सकते हैं, दो ग्रोह, दो ममालिक, तो ये वो बाब है जिसमें कुछ लोग हैं जो आपस में राजी हैं, रजामंद हैं। तरादिन, उदवान, आइन दाल वो, अदु दुश्मन को कहते हैं, और उद्वानन दुश्मनी, ज्यादती, अदावत इसी से है। नुस्लीही, नुस्लीही अहम लफ्ज है, स्वाद, लाम या इसका मादा है, ये आग में दाखिल होने के लिए मखसूस है, आग में दाखिल करना, जलाना, उसके लिए सल्ला का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, वैसे दाखिल होने के लिए दखला आम लफ्ज है, मारूफ है। वलाजा, तंग जगह में दाखिल होना, और स्वाद लाम या, आग में दाखिल होना, और सीन लाम काफ सल्ला का इसके मानी होते हैं परोना, घुसाना, मोती में धागा परोना, वो भी दाखिल किया जा रहा है, लेकिन मानी क्या है, एक चीज दूसरी चीज में खींचना या दाखिल करना। जैसे दिल के अंदर ईमान, दिल के अंदर ईमान का दाखिल होना उसके लिए भी आता है, या दिल के अंदर किसी का निफाक दाखिल किया जाए, तो एक चीज के अंदर दूसरी चीज को परोना, घुसाना, इस तरह भी डाला जाता है। तो असल बात क्या है, दाखिल होना, आग में दाखिल होने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यसीरा यूसर से है, आसानी के मानी देता है। इन्ना माल उसरे यूसरा। तो आप अल्फाज को याद करने के लिए आप ऐसे कर सकती हैं कि अगर उसका ऑपोजिट आपके सामने आ जाए ना, तो आपके लिए उसका याद करना आसान हो जाएगा। तजतनिबू, तो इसका मादा है जीम नून बा जंबुन, और इसके मानी होते हैं पहलू के। अब आप देखें कि इन तजतनिबू, और इसके बाद आगे आप देखें तो अन हु भी आया है, अन अन की प्रेपोजिशन, तो जैसे पहलू ते ही करना मानी है, एक तरफ को होना, एक जानिब को हो जाना। तजतनिबू इज्तनाब करना, एक तरफ को होना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप उर्दू में भी इसका इस्तेमाल करती हैं, पहलू तही करना, इज्तनाब करना, तो यहां पर बचना, इज्तनाब करना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। कबायरा, कबायर जो है ये काफ बारा से है, इसकी फैमिली के बहुत से अल्फाज आपको आते हैं, अकबर, कबीर, कुबरा, किब्र, तो बड़ाई, बड़ाई के मान देता है। और कबायर जो है ये कबीर से है, तो कबीर बड़े को कहते हैं और कबायर उसकी जमा है, तो बड़े बड़े गुनाह, उसके लिए यहां पर आया है। कफरा, मुकफिर लफ्ज है ना, तो काफवारा, मुकफिर काफारा, काफारा के माने होते हैं छुपा देना, मिटाना, हकीकत पे पर्दा डालना। काफिर जो है वो हकायक को झुठलाता है, हकायक पे पर्दा डालता है। काफिर किसान को भी कहते हैं, वो दाने को मिट्टी में छुपा देता है। काफिरतुन रात को भी कहते हैं, रात की तारीकी दिन के उजाले को छुपा देती है, उससे पर्दा डालती है। और अल्फाज की ज्यादती, मानी की ज्यादती पर दलालत करती है। फा पर शद आई है, दो फा हो गई, तो अब छुपाना ही नहीं, मिटा देना, हटा देना, ये मानी देता है, क्योंकि कफिर के साथ अन भी आ गया ना। सय्यातिकुम, सय्यातुन वाहिद है, सय्यात जमा है, रूट है इसका क्या है, सीन वो हमजा सू से है, ये बुराई के लिए आता है। मुदखिलुकुम, मुदखिलकुम दखला, आम दाखिल होने के लिए मारूफ लफ्ज है। फिर उसके बाद है मुदखलन, तो मुदखल वो जगह जिसमें दाखिल हुआ जाए, मुदखल इसके मानी है मकान, मकान के या फिर मकाम के जिस जगह जो है कोई दाखिल होता है तो उसको मुदखल कहते हैं। करीमा, करम से है। असल में काफरा मीम कहते हैं अंगूर की बेल को। तो पहले अरब के यहाँ ये रिवाज था कि अंगूर की बेल को वो कसरतुल मुनाफे समझते थे, बहुत ज्यादा मुनाफे की चीज, क्योंकि फल भी था, फिर उस बेल से वो बाग के इर्द गिर्द बाउंड्री भी बनाते थे सराउंडिंग, क्योंकि बाग के लिए क्या करते थे कि अंदर काश के लिए जमीन रखते थे, बीच में नहरें हैं, इर्द गिर्द जो खजूरों के ऊंचे ऊंचे दरख्त दीवार की तरह उस पर अंगूर की बेलें चढ़ा दिए, बाग का काम कर रहे हैं। फिर उसे और क्या करते थे, फल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और क्या करते थे, उसे वो शराब बनाते थे और बहुत से उसे फायदे लेते थे। तो किसी को भी जो है वो बहुत ही फिर वो इज्जत की जगह पे रखे या बहुत ही नफे के लिए समझे, तो फिर उसके लिए करीम, तो कर्म, तो अकरम, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाने लगे। तो करीमा तो ये मुदखला की सिफत के तौर पर आया है। इक्तसबो कमाना, काफ सीन बा कसब, कसब जो है ये कमाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अच्छी कमाई भी हो सकती है और बुरी कमाई भी हो सकती है, लेकिन जब एक कसाब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसके मानी क्या है कि उन्होंने जो भी कमाई की है, क्योंकि कसाबा कमाना और एक कसाबा ऐसी कमाई जो सिर्फ इंसान अपने मफाद को सामने रखकर करे, नफे और फायदे के लिए कोई काम करना अपने नफे और फायदे के लिए है इक्तसाब। और वैसे कसब क्या है कि फायदे के लिए काम करना, अपना फायदा हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। मवालिया, मवालिया वाहिद है मौला और मानी है वारिस, आका, आजाद किया हुआ गुलाम, चचाजाद भाई, इन सब के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, हकदारों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका रूट क्या है, वलामिया वली से है, और वैसे यूं देखें तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दोस्ती के लिए, है ना, वली का लफ्ज दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये मवालिया औलिया इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसी दोस्ती मोहब्बत रिश्तेदारी के, जैसे इससे मुराद रिश्तेदार भी हैं, इससे मुराद रिश्तेदार भी हैं, इससे मुराद जो है वारिस भी हैं, आजाद किए हुए गुलाम भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं। तो इस तरह ये लफ्ज मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वलायत का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, वली दोस्त को भी कहते हैं, और अल वला कहते हैं तरके की विरासत के लिए, तरके के जो वारिस हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल वालिदानी, अल वालिद बाप को कहते हैं, और अल अल वालिदान इससे दो बाप मुराद हैं, और मानी है इसके माँ और बाप दोनों। ऐमानुकुम या मीम नून से है, दाएं हाथ को कहते हैं, यमुना, तो ईमान उसकी जमा है। कवामून, कवामून वाहिद कवाम है, मुहाफिज, जिम्मेदार, सरपरस्त को कहते हैं, और काफ वो मीम से है। फसवालिहातु, फसवालिहतुन वाहिद और फसवालिहात इसकी जमा है, मादा है स्वाद लामहा, सुलह नेकी के लिए आता है, खानितातुन फरमाबरदार औरतों को कहते हैं, खानित खानितातुन वाहिद है और खानितात इसकी जमा है। इसका मादा है काफ, काफ नून ता और काफ नून ता लोग नाम भी रखते हैं कानिता, और दुआए कुनूत, कुनूत का भी यही मादा है। तो काफ नून ता जो है ये अतात फरमाबरदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी फरमाबरदारी जिसमें दिल भी झुका हुआ है और इसके साथ जिस्म भी झुका हुआ है। वैसे देखें तो आपने जो है वो अतात के लिए कई अल्फाज पढ़े हैं, खाली अतात भी तो हो सकता था ना, इत्तबा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो है वो कानितातुन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फरमानी है कि फरमाबरदारी हाफिजातुन, हाफिजातुन वाहिद है, हाफिजात इसकी जमा है, गैब पोशीदा के लिए आता है, ये इसका मादा है। अल्लाती वाहिद है और अल्लाती जमा है, और अल्लाती अल्लादी का ऑपोजिट है, और अल्लादीना अल्लाती का ऑपोजिट है। नुशूज़हुन्ना अहम लफ्ज है, इसके मानी है उठाना, उठाने के लिए कुरान में 10 लफ्ज आए हैं, और अनशजा नशजा ये 8वां दर्जा है। नून शीन जे के बुनियादी मानी है रफा, इर्तफा बुलंदी, उठान उभार। जब किसी चीज में उठान हो और ये उठान जो है तहर्रुक और हिजान का नतीजा हो, तो आप देखें कि कोई है वो उठ खड़ा हुआ, उठ क्यों खड़ा हुआ, किसी तहरीक के नतीजे में, किसी बात के नतीजे में, किसी ने उसको उभारा और वो उठ खड़ा हुआ। और कुरान में ये लफ्ज जो है ये खावन की हुक्म अदूली के लिए आया है, औरत का शोहर से सरकशी का जो रवैया है, और खास तौर पे उसका वो हक ना देना जो कि शोहर का बनता है, मियां बीवी का जो ताल्लुक का हक है उसके लिए आता है। नुशूज़ा हुन्ना, फाइजू हुन्ना, वो एन जोए वाज करना, नसीहत करना, इसके मानी है कि ऐसी नसीहत ऐसा वाज कि जिससे दिल नरम हो जाए, ऐसी भलाई की बात कहना जिससे दिल में रिक्कत पैदा हो, कभी डराकर कभी शौक दिलाकर नेकी की तरफ मायल करना, जहन्नुम का खौफ भी हो जन्नत का शौक भी हो, तरहीब भी हो तरगीब भी हो। वह जुरू हुन्ना हाजिमरा जुदाई के लिए आता है, अलमदाजी ये खास लफ्ज है, द्वाद जीम आइन, इसके मानी है महलू या करवट के बल लेटना, सस्ताना आराम करना। सोने के लिए कुरान में, गोल्ड के लिए नहीं जो स्लीप सोया जाता है उसके लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं, और दुआ जीम ऐन दजा इसका 5वां दर्जा है। तो आराम करना, पहलू या करवट के बल लेटना। अब जब आप आराम कर रहे हैं, खा नींद आए या ना आए, ऊंगी आए, नीम खाबी की हालत को भी कहते हैं उसको दुआ जीम ऐन। और अल मदाजे ये सोने की जगह को कहते हैं, बिछोने को, बिस्तर को। फाइन अतानकुम, अतानकुम आप पढ़ चुकी हैं, क्या मादा है? तो ये वो आइन अतात। अलियन क्या मादा है? आइन लाम वो उलू से है, बुलंदी के लिए आता है। आला शिकाक, शीन काफ काफ, इसके मानी है सख्त चीज का फटना, क्योंकि फटना इसके लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं। शक्का, सख्त चीज का फटना। बिलमूम इसका कुरान में इस्तेमाल आसमान, जमीन, चांद, पत्थर, ऐसी बड़ी और सख्त चीजों के लिए हुआ है, इनके फटने के लिए इस्तेमाल अल्लाह ने किया है। तुम्मा शकक नल अर्द शक, पहले भी आपने पीछे भी पढ़ा था। तो शिकाक जो है, यहां इसके माने क्या है? दिलों के फटने के लिए इस्तेमाल है। दिलों के अंदर जब रंजिश पैदा होती है, दूरी पैदा हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि फिर आपस में मियां बीवी में जुदाई, तलाक, खुला, ऐसे हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इनशिकाक, सूरत इनशिकाक, इसी तरह शक्का और शिकाक जुदाई और फटने के हैं। हकम, हकम जज, मुनसिफ के मानी है यहां पे, और यही इसके मानी है। यूरीदान, नून तस्मिया का गिर चुका है, यूरीदा वो दोनों इरादा करें, और इरादे का रूट क्या होता है यूरीदू का? रावोदाल, रोद से है। रवैदा, सूरत तारिक के आखिर में है, रवैदा। अम हिल हुम रवैदा, उनको थोड़ी सी जो है वो मोहलत दे दी जाए, तो थोड़ी सी का इरादा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, अलीम आइन लामीम से और खबीरन खाबारा से, खबर। आयत नंबर 36, इसमें लफ्ज आया है वाबुदू, आइन बादाल इबादत, अब्द गुलाम को कहते हैं, नौकर को जो इबादत करता है, अमत लौंडी, बाज लोग नाम भी रखते हैं, अमतुल हफीज, अमतुल रकीब। तो यहां पे ऑर्डर का सीगा है कि पूजा करो, प्रस्तिश करो, अतात करो, बंदगी और गुलामी करो। वबिजिल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ, जू जा जी, ये तीनों तरह आता है, वाला वाली इसके मानी होते हैं, और ये इसकी हालतें हैं। दू फाइली हालत है, जा नस्बी है, और वी जो है ये जर्री है, बा पहले आया ना, तो इसने इसको जी कर दिया। कुर्ब करीबी से है, इस्तेमाल होता है रिश्तेदारों के लिए, कराबतदारों के लिए, और वैसे करीबी को भी कहते हैं। यतामा, अल यतामा यतीम की जमा है, अल मसाकीन मिस्कीन की जमा है, वल जारी इसका मादा है जीम वोरा, पड़ोसी हमसाए को कहते हैं, जो करीब होता है, साथ होता है। वल जारिल जुनूबी, जुनूब अहम लफ्ज है, इसका मादा है जीम नून बा, इसके मानी है पहलू, गोशा, सिंथ, जनबुल, पहलू, तरफ, गोशा, सिमत, इसकी जमा जवानिब है। जैसे सिमतें, जिहाद, उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सिमतें हैं या जिहाद, सिमत जो है ये छह हैं, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और शुमाल, मशरिक, जुनूब, मगरिब। और वैसे हम जानिब या सिमत किसे कहते हैं, जिसका किसी काम के वक्त करीब होने से ताल्लुक हो, कि इस तरफ या इस तरफ या ऊपर या आगे या पीछे, तो एक साइड, इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जानिब का मतलब क्या है कि करीबी सिमत। और कभी ये जो सिमत होती है ये करीब भी होती है, कभी ये दूर भी होती है। जनाबत लफ्ज भी इसी से है, जनाबत दूरी, बेगानगी। अजनबी भी इसी से है। अजनबी क्या होता है कि जैसे जिसको जानते नहीं है, दूर दूर का। तो जनाबत के मानी क्या है, वो नजासत कि जिसकी वजह से आदमी तहारत से दूर हो जाता है, बेगाना हो जाता है। तो वो नजासत जो कजाए शहवत से या ख्वाब में मादा खारिज होने से लाहक होती है, उसको नजासत कहते हैं। वबन सबील, इब्न बेटा, असबील रास्ते का। और सबील ऐसे रास्ते को कहते हैं जो खुला हो, कुशादा हो, जिस पर बस सहूलत चला जा सके। सिरात उस रास्ते को कहते हैं जो पुरपेच हो, तंग हो, मुश्किल हो। तो स्वाद रहता तलवार के लिए आता है ना, तलवार की तरह वो रास्ता नुकीला है, तलवार जैसे धार वाली तेज होती है, इसी से पुल सिरात। तो मुश्किल रास्ते के लिए सिरात आता है, सबील खुले और कुशादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तालन फखूरा, ये जो है वो इतराने के लिए ये लफ्ज बोले जाते हैं दोनों। तकबर करना, इतराना, इसके लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं। और मुख्तालन चौथा दर्जा है। इसके लफ्जी मानी है मुख्तालन के, मुतकबिर, तकबर करने वाला, मादा है खा या लाम, खैल। खैल का लफ्ज जो है ये घोड़े के लिए भी आता है। घोड़ा क्या करता है, जब घोड़े पर सवार हो जाए तो बहुत तेजी से लेके जाता है ना। आप ऐसे हैं जैसे कि उड़ रहे हैं, तखयुल। कुछ लोग ख्यालात में रहते हैं, तो जो लोग ख्यालात में होते हैं वो क्या करते हैं, तखयुलाती लोग जो होते हैं ना, उनका दिमाग आम जो लोग होते हैं उनसे ऊंची सतह पर होता है। वो हर वक्त तखयुलात में लगे रहते हैं। शेख चिल्ली की कहानी आपने सुनी होगी कि हर वक्त तसव्वुर ही तसव्वुर में, और वो कहां से कहां पहुंचा, और वो जो बात काम कर रहा था, तो वो एक अंडा है हाथ में, तो वो मैं उसको मैं बेचूंगा, तो उसे फिर मुर्गी पता नहीं लूंगा, तो फिर उसे घी आएगा, तो फिर मैं शादी करूंगा, फिर ये करूंगा, तो फिर अगर मेरी बीवी मुझे कुछ कहेगी तो टांग मारूंगा। तो जो जोर लगाया तो वहीं भी अंडा टूट गया, तो वहीं कहानी उसकी खत्म। तो बहरहाल ये हमारी जो है वो कहानियों में शेख चिल्ली का तसव्वुर जो है वो मिलता है। तो तखय्युल भी इसी से है। तो खा या लाम के बुनियादी मानी है यदुल्लु अला हरकतिन फी तलवन, आसान लफ्जों में वो हरकत जो हर आन नया रंग बदलती है। ख्याल भी होता है ना, थोड़ी देर पहले कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, हर आन आपकी सोच ख्याल बदलता जाता है। तो तखय्युल के मानी होते हैं तसव्वुर बांधना। तो मुतकब्बिर को भी जो है वो मुख्ताल कहते हैं। मुतकब्बिर को मुख्ताल कहते हैं, क्यों, इसलिए कि वो अपने ख्यालों ही ख्यालों में जो है ना वो उड़ रहा होता है, अपने आप को बड़ा समझ रहा है, और तसव्वुर बांध रहा है, अकड़ कर चलना, तकबूर की चाल चलना मुख्तालन कहलाता है। फखूरा, ये इससे अगला दर्जा है, पांचवा दर्जा। और फा खारा के मानी है ऐसी बातों पर शेखी बिगाड़ना जो इसके अपने कब्जा और इख्तियार से बाहर हो, मसलन हसब नसब, विरसे में जो दौलत मिल जाए उस पर शेखी बिगाड़ना। अब आप देखिए कि अगर कोई हसब नसब के लिहाज से अच्छे खानदान में पैदा हो जाए तो उसमें उसको क्या क्रेडिट है, लेकिन वो उस पर क्या करता है, फख्र करता है। इसी तरह कोई किसी को विरासत में दौलत मिल जाए उसका तो कोई दखल नहीं उसमें। इसी तरह कोई पैदाइशी तौर पर ही खूबसूरत हो जाए फिर उस पर वो फख्र कर रहा है, ये तो अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया, उसका कोई क्रेडिट नहीं, तो फखूरा ये उसे अगला दर्जा है। तो इख्ताल है मुतकबिराना चाल चलना, तसव्वुराती तौर पर अपने आप को दूसरों से अच्छा समझना, दूसरों को हकीर जानना। और फखरा ऐसी बातों पर इतराना जिसपे उसका अपना कोई दखल नहीं है। आयत नंबर 37 में मोहिना हा वनून, अगर हा पर फतह है जबर है तो नरम, आजी इनकसारी। अगर हा पर पेश है रफा दमा तो मानी है जिल्लत रुस्वाई, रुस्वा कौन, रिआ रा हमजाया शाबाश, तो इसी से रईता देखना और रोया ख्वाब और या दिखावा। आ रईता क्या तूने देखा, मुख्तलिफ इसकी फैमिली के अल्फाज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। परीगन ये अहम लफ्ज है, इसका रूट है काफ रा नून कर्ण, कर्ण। अरबी जबान में कर्ण उस रस्सी को कहते हैं जिससे दो ऊंट बांधे जाएं। अब फिर वही बात ऊंटों की आ गई ना, तो अलकर्ण हमसर, इल्म में नजीर मुकाबिल शुजात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इतलाक जानदार और बेजान सब चीजों पर होता है। किरानु सादेन दो सात सितारों को कहते हैं जो बुर्ज में दो इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब तो दो सात सितारे एक बुर्ज में दोनों इकट्ठे जमा होते हैं, तो जैसे एक बुर्ज में दोनों इकट्ठे हो गए तो आपस में क्या है, किरान है, साथी हैं। एक रस्सी से दो ऊंट बांधे ना, अब दो सितारे एक जगह जमा हो गए, तो इसी से करीन वो आदमी जो दूसरे का हम उम्र हो। मतलब आप में से एक की उम्र जो है वो 40 साल है, तो जो आपके साथ बैठी है इनकी भी 40 है, मैंने 50 नहीं कही। तो अब दोनों उम्र के लिहाज से एक जैसी हो गई, इसका मतलब 30 कहूं। हाँ, अच्छा, तो दो की उम्र 30 है, ठीक है। अच्छा, अब उम्र के लिहाज से दोनों एक जैसी हैं, हम उम्र हैं, हम पल्ला हैं, तो ये भी इसको भी करीन कहा जाता है। तो उम्र में हम पल्ला होना, बहादुरी में हम पल्ला होना, कुव्वत में या किसी भी वस्फ में दूसरे का हमसर होना, तो उसके लिए भी करीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक रस्सी ने दो ऊंटों को इकट्ठा कर दिया, उमर ने दो लोगों को एक जैसा, अब वो आपस में उमर के लिहाज से करीन है। बहादुरी में दोनों आपस में एक दूसरे के जो है हम पल्ला है, शुजात में करीन। हाँ, इस एक बात जो इसमें याद रखने वाली है कि इस लफ्ज का अमूमन इस्तेमाल बुरे मानों में होता है, बुरे मानों में इसका इस्तेमाल होता है, और जो है वो बुरे दोस्त के लिए भी ये लफ्ज आ जाता है, और फिर खास तौर पर शैतान के लिए, हम पल्ला, हम उमर, हम सर, तो शैतान के लिए जब दोस्ती के लिए लफ्ज आता है ना, तो अक्सर आप पढ़ेंगे ये कि करीना। फसा, उसका मादा सीन व हमजा है, मिसकाला आप पढ़ी चुकी हैं पहले भी, इसका मादा है सा काफ लाम, इसके मानी है बराबर, बोझ के लिए भी आता है, जर्रा, जारारा, जुर्रियत, छोटी छोटी चूंटियों को भी कहते हैं, मखलूक के लिए भी आता है। तकू का वो नून है रूट इसका, और आगे आपको वो नजर नहीं आ रहा ना, वह इन तकू नजर आ रहा है। वह असाबु रसूला, तो असाबु जो यहां लिखा है इसका मादा है ऐन स्वाद वो, ऐन स्वाद या, नाफरमानी करना, मासियत गुनाह करना। तो सवा सीन वो या, बराबर हमवार करना, मुसावी आप पहले ही पढ़ चुकी हैं, मुसावी। आयत नंबर 45 है, लफ्ज है सुकारा, सीन काफ रा, और ये कहते हैं सुकारा नशे की हालत को कहते हैं, सुकरान ये मुबालगे का सीगा है, कोई बहुत ज्यादा जो है वो नशे में हो तो उस वक्त भी ये लफ्ज बोला जाता है, सीन काफरा अलिफ नून सुकरान। तो सुकारा वो जो बदमस्त है, सकरा बदमस्त करना, बेहोश करना, और बदमस्त या बेहोश करने के लिए कुरान में तीन लफ्ज आए हैं, सकरा इसका आखिरी दर्जा है। इसका इस्तेमाल अमूमन शराब की वजह से मस्ती और अकल जाया हो जाने पर होता है, और सकरा हर नशा आवर चीज, जब किसी भी चीज की मस्ती हो तब भी बोला जाता है, जैसे इश्क की मस्ती है, मौत की सख्ती है, लेकिन बिल अमूम जो है ये शराब के नशे के लिए बोला जाता है, जैसे सकरातुल मौत, उस वक्त भी हम ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। खौफ, अगर किसी खौफ दहशत की वजह से किसी की ऐसी हालत हो जाए तब भी ये लफ्ज बोला जाता है। फिर उसके बाद है आबरी, आइन बारा, उबूर करना, पानी से गुजर जाना, खा तैर कर या सवारी से। उबूर करना, तैर कर या सवारी से, इबरत भी है। इबरत में क्या है कि आप एक वाके से जो है वो गुजर कर एक नतीजा इबरत हासिल करते हैं, उसमें से पूरे वाके में से गुजर जाते हैं ना। तो ये लफ्ज जो है वो हमारे उर्दू में काफी कसरत से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उबूर करना, तो कभी आप सफर कर रहे हैं तो सवारी पर कर रहे हैं, कभी ऐसे है कि पानी में से आप तैर कर गुजर रहे हैं तब भी इस्तेमाल किया जाता है। तग्तसलू गुसल करना, नहाना, आयत नंबर 43 है और इसमें लफ्ज है अलगायती, अलगायती इसका रूट है गैन वो तोए, इसके मानी है गड़ा, गड़ा। गड़े के लिए कुरान में चार लफ्ज आए हैं, हुफरा, जुरुफ, उखदूद। आखिरी लफ्ज जो इस वक्त आप पढ़ रही हैं ये है गायत, गौत, गैन वो तोए। इसके मानी होते हैं कि जैसे जमीन के अंदर गड़ा या पस्त जमीन, जहां से जमीन निचली हो ना, नीचे गई हुई हो, उसके लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है। इसी तरह गातल हुफरा गड़ा खोदना, गवातल बेर कुएं को गहरा खोदना, अलगायत ऐसी पस्त जमीन, ऐसी निचली जगह जहां लोग जाकर अपनी कजाए हाजत कर लें। जो शर्मो हया वाला आदमी है या औरत है, बाज देहाती इलाकों में शायद अब भी ऐसा हो कि घरों में बाथरूम वॉशरूम वगैरह ये नहीं बने हुए, और लोग जो है रफ़ हाजत के लिए किसी ऐसी जगह जाते हैं जो गड़ा सा हो, गहरी हो, जमीन निचली हो, ताकि जब बंदा बैठे तो दूर वाले को नजर ना आए। तो पस्त जमीन किनायतन कजाए हाजत की जगह। फतयम मामू या मीम मीम, पानी के जखीरे के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और इसके लफ्जी मानी है इरादा करना, इरादा करना। इरादा करने के लिए कुरान में 7 लफ्ज आए हैं। तयम्मुम का 6ठा दर्जा है। बाज कहते हैं इसका रूट या मीम मीम है, और बाज कहते हैं इसका रूट ता मीम मीम है। तम्मा, तम्मा का अगर रूट लिया जाए तो मानी है अमदन और कसदन कोई काम करना। ऐसा काम जहां सोच फिक्र और मशवरे की जरूरत नहीं, बल्कि अहकाम शरई की तामील का इरादा करना। कुरान में ये लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, एक दफा हुक्म देने के लिए और दूसरी दफा मना करने के लिए। एक दफा पहले आप सूरत अल बकरा की आयत 276 में पढ़ चुकी हैं, और दूसरी दफा आप अभी पढ़ रही हैं। फतयम्मम, बस तुम इरादा कर लो। स्वईदन, स्वाद आयन दाल, मानी है मट्टी के। मट्टी के लिए कुरान में कई लफ्ज आए हैं। नौ लफ्ज है, और सईदन 7वां दर्जा है। असल में स्वाद आयन दाल के लफ्जी मानी होते हैं ऊपर चढ़ना। सईद जमीन का बलाई हिस्सा और उस पर मौजूद गर्दो गुबार जो ऊपर चढ़ जाता है। जमीन के ऊपर भी मिट्टी होती है ना, गर्दो गुबार, वो ऊपर चढ़ जाती है। तो हर हमवार जमीन सईद है। वजहुल अर्द, जमीन का जो चेहरा यानी ऊपर की मिट्टी, ऊपर का गर्दो गुबार, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो जमीन की ऊपर की सतह दर सतह का गर्दो गुबार जो है। फमसहु, मसा करना। मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लकब था ना, वो हाथ फेरते थे तो लोग ठीक हो जाते थे।